ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा है कि तीनों काम एक साथ करो, मनसा वाचा कर्मणा सेवा, एक साथ करो। इसलिए मैंने ओम शांति भी एक बारी कह दी है, उसको आप तीन समझना, हो सकता है ना? वैसे तो प्यारे बाप दादा की हर एक मुरली अमृत समान होती है, नाम ही है ज्ञान अमृत, और वो हमें अमर बनाने के लिए है कि हम पक्के पक्के अमर बन जाएं और सारा कल्प हम उस अमर स्थिति में रहे। फिर भी जो कल प्यारे बाप दादा की मुरली चली वो विशेष तौर पे जो इस समय सामने पधारे हुए ब्राह्मण हैं उनके लिए चली, क्योंकि जब बाप दादा का वीडियो चुना जाता है, जैसे हर एक बच्चे को बाबा ने चुना है, तो उसमें देखा जाता है कि ये ग्रुप जो है ये इस एरिया का पहले कब आया था, और उसी मुरली को चुना जाता है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि बाप दादा सभा बदल गई है, एक्टर बदल गए हैं, लेकिन वो मुरली जो है उन्हीं के लिए है, बाबा ने कहा, और इसलिए बाबा बोल रहे हैं, हाथ उठवा रहे हैं, पहले उस वक्त उठवाए थे, अब आप उठा रहे हैं। इसलिए विशेष इसमें जो कुछ भी होता है वो स्पेशल होता है। कल की मुरली का जो सार है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस सार को प्रैक्टिकल में लाने के लिए आपने अनुभव किया होगा कि बाबा ने विधि भी बताई है जो एक एक्सरसाइज के रूप में अंत में थी, 5 मिनट की एक्सरसाइज। सार इसका क्या है कि मान लीजिए जिस कुर्सी या सोफा पर आप बैठे हैं, जब आप आए यहां पर, अगर उसमें कुछ कीचड़ लगा हुआ होता तो आप उस पर बैठते बैठते या नहीं बैठते? जो कहते हम बिल्कुल नहीं बैठते, वो जरा अपना हाथ उठाइए, पता लगे आप सुन रहे हैं जो कुछ बोला जा रहा है। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो भले बैठ जाते, कोई बात नहीं, ये भी है। हाँ, अच्छा। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि बच्चों का दिल जो है वो मेरा तख्त है ना। हम कहते हैं हम बाबा के दिल तख्त नशीन बने, तो बाबा के दिल तक नशीन बनने के लिए भी अगर हमारे कपड़ों में मैल या कीचड़ लगा होगा तो हम बैठेंगे ही नहीं, और बाबा हमारे दिल तक नशीन बने तो हमारे दिल तख्त पर भी अगर कोई भी प्रकार का कीचड़ या कचरा होगा तो हम ऑफर ही नहीं करेंगे बाबा को कि आप बैठो। दुनिया में भी साफ कुर्सी हो तो भी कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसको दोबारा से साफ किया जाता है। तो इस मुरली का सार ये है, हम लोग कहते रहे हैं भक्ति में भी दिल एक मंदिर है, दिल बहुत ही खुदा का घर है, परमात्मा का याद का निवास स्थान है। जो कहते हैं भगवान घट घट में व्यापक है, तो घट घट में व्यापक का अर्थ सर्वव्यापी नहीं होता। अगर सर्वव्यापी इसका अर्थ हो तो कहें सबके शरीरों में अंग अंग में व्यापक है, तो कहने वाले ने क्या कहा, घट घट में व्यापक है। अब घट भी दिल को ही कहते हैं, ये परमात्मा तो नहीं है, तो एक परमात्मा इतने सारे दिलों में कैसे बैठेगा। उसकी याद व्यापक है, दिल एक याद की स्थान है। और सचमुच व्यापक हो जाए तो क्या कहना, याद करने की भी जरूरत नहीं। तो इस मुरली को ही जो बाबा ने शिक्षा दी है, कई रूप से बाबा ने कहा हुआ, दिल से संकल्प उठता है, दिल से विचार उठता है, दिल में भावना होती है। तो बाबा ने कहा हुआ है कि बजाय आप इंतजार करो कि दूसरा कोई अशुभ आपको कह दे और गलती से ना चाहते हुए भी आपके अंदर चला जाए, तो क्या करना चाहिए। हर वक्त सोचते रहो इसने शुभ कहा है या अशुभ कहा है। अच्छा, अशुभ कहा है तो अशुभ को अंदर नहीं ले जाना, बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे स्कूल में पढ़ाते थे, थिंक बिफोर यू स्पीक, के बोलने से पहले सोचो। देसी भाषा में कहते थे पहले बात को तोलो फिर मुंह से बोलो। अच्छा, अब हर बार बोलने से पहले हम सोचें, संभव है? आपको हर बार टाइम मिलेगा कि पहले सोचो फिर बोलो? नहीं। तो इसलिए बाबा ने ये फॉर्मूला बताया था कि आप जो भक्ति मार्ग में कहते आए हो उसको फॉलो करो। भक्ति मार्ग में हम क्या कहते थे, सबको याद है जो तुझको कांटा बोए, याद है ना, जो तुझको कांटा बोए वा को बो तू फूल। कारण क्या, जो बोएगा सो पाएगा, तुझको फूल के फूल है, वा को है त्रिशूल, वो कांटे वाले को कांटे मिलेंगे। इसलिए बाबा ने कहा आप पहले ही अपने मन को फुल रखो कि मेरे मन की मशीन का काम है हर एक के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखना, हर एक के लिए। जब आप रखोगे शुभ भावना शुभ कामना और किसी चीज को आने का मौका ही नहीं है। ऐसे बाबा भी कहते हैं अगर मेरे को दिल में बसा लो बहुत आसान है, जहां बाप है वहां क्या है, यहां बाप है वहां पाप नहीं है, और जहां पाप है वहां बाप नहीं है। इस मुरली का मुख्य सार ये है। अब हम इसको सुनते हैं। श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र प्रसारित करो। दुआ दो और दुआ लो। आज प्यार और शक्ति के सागर, तो इस मुरली में बाबा ने दोनों ही बातें कही हैं, प्यार और शक्ति। बाप दादा अपने स्नेही शिकीलते लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए, सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह के आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है स्नेह का। माँ का बच्चा स्कूल से लेट आए तो माँ तड़पने लग जाती है, क्या हुआ होगा, सोचने लग जाती है। तो हम तो प्यारे बाबा के 5000 वर्ष के बाद इसी मौके पर मिलने वाले बच्चे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं चाहे सन्मुख बैठे हैं चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं, क्योंकि जब बाबा की मुरली का टाइम होता है तो विदेश में कई जगह रात के 12 बजे होते हैं, कई जगह सुबह के 3 बजे होते हैं, कई जगह अलग अलग टाइम होता है, लेकिन बच्चे मुरली सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। एक होते हैं संगी, एक होते हैं साथी। तो बाबा कहते हैं जो बाप को याद करते हैं वो संगी हैं, उनको संग का रंग लगता है। तो जितना समय याद में रहेंगे बाबा की संग का रंग लगा रहेगा। एक होते हैं साथी। तो बाबा कहते हैं संगी आपने बाबा को बना लिया, पर गलती से साथी किसी और को बुला लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। साथी सदा बाप रहे, बाकी सहयोगी हैं, हम उनके सहयोगी हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख रहे हैं। जिन्होंने बाबा को साथी बनाया हुआ है उसका स्लोगन क्या है? साथी का स्लोगन क्या है? मुश्किल बात है। मेरा तो शिव बाबा एक, ये है ना साथी का स्लोगन। उसकी अगली लाइन जरा खतरनाक है, मेरा तो शिव बाबा एक तो सब कहेंगे, दूसरा ना कोई मुश्किल है। क्या कहेंगे? शिव बाबा भी मेरा, दूसरे भी मेरे, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। इसलिए बाबा कहते प्रॉब्लम होती है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष कर दें। हमने ड्यूटी ली हुई है बाप को प्रत्यक्ष करना, सारी दुनिया को पता लग जाए कि बाप आया हुआ है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे हो, कोई राजनीतिक नेता नहीं हो। तो राजनीतिक नेता क्या करते हैं? वो आएंगे कहेंगे ज्ञान बहुत अच्छा है, सबको लेना चाहिए, इतना कह के चले जाएंगे। तुमने लिया कि नहीं लिया, चुप। इसीलिए बाबा कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम सबके आगे प्रत्यक्ष करते रहें और खुद को प्रत्यक्ष ना करें। तो इस मुरली में ये भी कहा गया है, बाप कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तभी कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपन्न और संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। लोग पहले सैंपल देखेंगे किसका बाप है, उसके बच्चे कैसे हैं, उसके बच्चों में और हमारे में फर्क है, तब तो कहेंगे कि बाप को हम भी मिलें। अगर वो कहें कि ये भी हमारे जैसे ही हैं फिर क्या होगा? तब बाबा कहते हैं कंडीशन ये है, ज्ञान तो हो गया, बाप बहुत अच्छा है, सर्वशक्तिवान है, स्नेह का सागर है, लेकिन अगर वो गुण अपने में संपन्न रूप से नहीं होंगे फिर कोई नहीं मानेगा। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा, और बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे? पहले है स्व परिवर्तन, फिर है विश्व परिवर्तन। अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है बाबा से, तो डेट पूछ रहे हैं प्रत्यक्षता की, और बाबा कहते हैं कि मैं आपसे डेट पूछ रहा हूं अपने संपन्न बनने की डेट प्रत्यक्ष की है, फिक्स की है, क्योंकि फॉरेन वाले भी बैठे थे। तो बाबा कहते हैं फॉरेन वाले तो हर बात के लिए कहते हैं कि एक साल पहले डेट फिक्स की जाती है। उनको कहो फॉरेन से वीआईपी को लाना है तो कहते हैं कम से कम एक साल चाहिए, वो डेट फिक्स करो तब हम उसको ला सकते हैं, ऐसे नहीं अगले महीने आ जाएगा। तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है। अब मान लीजिए हम सब मीटिंग में बैठे हैं तो कौन सी डेट बाबा को बताएं? क्यों जी, आप कोई डेट बताएंगे जो बाबा को बता दें कि ये डेट सबने फिक्स की है? दो महीने बाद सही, चार महीने बाद सही, 31 दिसंबर सही, 1 जनवरी सही, तो फिक्स करनी है आपको डेट के नहीं? बाबा पूछ रहा है। चलो आगे चलते हैं। तो बाबा ने पूछा कि अपने को बाप समान बनने की आपस में डेट फिक्स की है। अब बाप देख क्या रहे हैं? बाप देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग बहुत होती रहती है, डबल फॉरनर भी मीटिंग बाप में जो की बाप दादा ने सुनी बहुत अच्छी लगी, सब मीटिंग बाप दादा के पास तो पहुंच जाती है। तो बाप दादा पूछते हैं कि इस चीज की डेट संपन्न बनने और संपूर्ण बनने की कब फिक्स की है? क्या ये डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? ड्रामा भी कर सकता है, ड्रामा ने तो करी हुई है, लेकिन जो करेगा सो पाएगा। अगर ड्रामा में फिक्स है कि इस डेट को कलयुग अंत होगा और सतयुग शुरू हो जाएगा, तो ड्रामा के अनुसार कलयुग सतयुग में बदल जाएगा, क्योंकि ड्रामा ने डेट फिक्स की है। पर हमारा क्या होगा? इस तब बाबा कहते हैं ड्रामा की फिक्स डेट में तो ड्रामा चेंज करेगा, हम फिक्स करेंगे तो हम चेंज होंगे। इसलिए बाबा ने पूछा है क्या ये डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे, कौन करेगा? हमारे चेंज की डेट अगर ड्रामा फिक्स करेगा तो उसका फल किसको मिलेगा? ड्रामा को। इसलिए लक्ष्य तो आपको ही रखना पड़ेगा, और लक्ष्य बहुत अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया रखा भी है। क्या हर एक ने यही रखा? हमने संपन्न और संपूर्ण तो बनना ही है, हमारी क्वालिफिकेशन ही ये है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, अच्छे से अच्छा रखा है। किसी को कहो राम सीता बनेगा, कहेंगे नहीं। तो लक्ष्य क्या रखा है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण है, संपन्न और संपूर्ण बनने का रखा है। अब बाबा कहते हैं लक्ष्य तो अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया रखा भी है, अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण श्रेष्ठ लक्षण के अनुसार श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनना है। पहले कोई टारगेट रखता है फिर उसको अचीव करने की कोशिश करता है। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाता है। अंतर क्या है? किसी को कहो सतयुग में चलना है, हाँ जी तैयार हूं चलो, तो क्या क्या ठहरो थोड़ी देर में अपना घर वालों से मिलके आ जाऊं, है ना, तो फर्क पड़ गया ना। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो वह बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रू रिहान सुनते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि आप घर में बैठ कर के अमृत वेला करते हो तो मैं नहीं सुनता हूँ, कहीं भी करते हो, ट्रेन में करना होता है, मैं सुनता हूँ। बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए, पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, तीव्रता की दृढ़ता उसमें ऐड करो। एक तो तीव्र हो और फिर दृढ़ संकल्प हो, हम तीव्र ही चलेंगे। सब क्लास करते हैं, सब अमृत वेला करते हैं, सब सेवा करते हैं, सब दिवाली मनाएंगे, सब भोजन करेंगे, हमने सुना है कईयों ने करवा चौथ मनाया है तपस्या धाम में जाकर, ठीक है, लेकिन उसके साथ सहज सबज लगा हुआ, क्योंकि हम सहज योगी है ना, तो क्लास में भी आएंगे तो सहज, मिलिट्री वालों की तरह नहीं आएंगे, सिविल की तरह आएंगे, सहज, कुर्सी पर बैठेंगे तो भी सहज, उठेंगे तो भी सहज, भोजन करेंगे तो भी सहज, इधर उधर की कुछ बातें भी कर लेंगे। तो बाबा कहता है ये सहज जो है ये पुरुषार्थ के लिए नहीं है, सब पुरुषार्थ सहज हो कि आपको तकलीफ ना हो, कठिन ना लगे, उसके लिए है कि आपको कहीं यहाँ पहुंचना है तो आपको महसूस हो के ओहो जल्दी करो, वो नहीं, वो सहज है लेकिन स्पीड आपकी तीव्र होनी चाहिए, जैसे मिलिट्री वाले होते हैं, कोई बिजी व्यक्ति होता है वो बैठता है पहले सोचता है यहाँ से उठना कब है, पूरा ध्यान रखता है। और यहाँ हमने कल देखा स्टेज पर तो बैठे थे, बाबा हाथ उठवा रहा है तो हाथ भी उठा रहे हैं और उबासी भी लगा रहे हैं, तो बाबा कहते मुझे पता नहीं लगता क्या, इसलिए ये है बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आशा कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने। क्यों आशा है कि समय की स्पीड और हमारी स्पीड कम से कम बराबर होनी चाहिए, वास्तव में तो हमारी स्पीड तेज होनी चाहिए लेकिन बराबर तो हो। अब समय की स्पीड से चल रहा है, समय कभी रुकता है? वो तो रात को भी चल रहा है, अमृत वेले भी चल रहा है, और हम दिन में तो चलें और रात को क्या, अब समय तो आगे निकल जाए, हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, जैसे वो कछुआ और खरगोश था ना। इसलिए बाबा कहते हैं एक रस होना चाहिए, आपकी निंद्रा भी योग निद्रा होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि समय के प्रमाण हर एक बच्चा तीव्र पुरुषार्थी बने, चाहे बच्चे नंबरवार हैं बाबा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे। जो आप हमने नंबर हमारा इस समय है उसके अनुसार भी तो तीव्रता होनी चाहिए ना, बल्कि जो पीछे नंबर वाले उनको तो ज्यादा तीव्रता होनी चाहिए ताकि हम थोड़ा आगे आ जाए, उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, टाइम अपनी फाइनल गति तक ठक 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 करते पहुंच रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है ये भी निश्चित ही है, लेकिन सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। कहीं बनना ही है को भी दो अर्थ ले लेते हैं, बाबा कहते हैं बनना ही है का अर्थ क्या है, कि थोड़ा भी समय है अगर आप तीव्र गति से चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। लेकिन कई ये अर्थ ले लेते हैं, जब बनना ही है तो बन जाएंगे, ये भी अर्थ हो सकता है ना, जो बनना है बन जाएंगे। सतयुग में तो हर एक की पूरी आयु होती है, सतयुग में तो दास दासियां भी महलों में रहते हैं। तो बाबा कहते ये अर्थ नहीं है, बनना ही है निश्चित का। हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं। जैसे आप ट्रेन में चढ़ते समय, बस में चढ़ते समय तीव्र पुरुषार्थी हो जाते हो, है ना, किसी जगह कुछ टोली मिल रही हो या दवाई भी लेनी हो, उस समय तो तीव्र पुरुषार्थी हो जाते हो। लेकिन हर समय तीव्र पुरुषार्थी रहते हो, ये मतलब है। क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते हैं, सोने में तीव्र पुरुषार्थी, जागने में सुस्त पुरुषार्थी, ये तो ठीक नहीं है ना। बाबा कहते हैं पेपर तो आने और ही आने हैं, क्योंकि पेपर नहीं आएगा हमें क्या पता, पेपर हमको पक्का करता है, आगे बढ़ाता है। पेपर तो आने ही हैं, लेकिन अब देखिए कितनी फायदा है तीव्र पुरुषार्थी का। लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा। बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां निश्चित, डाउट नहीं होगा क्या नहीं होगा, और फिर निश्चिंत, जिसको निश्चित है कि मैं अपने कमरे में अपने पैसे अच्छी तरह संभाल के रख के या छुपा के रख के आया हूं या आई हूं, वो यहाँ निश्चिंत बैठा है। और किसके कहीं बाहर रह गए हों, भले यहां बैठा है, मन में लगेगा अरे कोई, उसको निश्चित नहीं कहेंगे ना निश्चिंत कहेंगे। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, ये निश्चित निश्चिंत है। सेवा में भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों प्रकार की सेवा इकट्ठी चली, क्योंकि टाइम थोड़ा है। मनसा द्वारा क्या सेवा कही है बाबा ने, आपको याद है मनसा द्वारा क्या सेवा कही है? चलो मनसा द्वारा नोट करना, मनसा द्वारा कह देंगे कि शुभ भावना शुभ कामना कहा, ये नहीं है। मनसा द्वारा अनुभव कराना कि जो आप हैं उसका मनसा रख के उसको प्रत्यक्ष करना, अनुभव करवाना। वरना क्या होता है, आपके मन में है ज्ञान सुनाना है, सब्जी वाला आया आप सब्जी ले लेंगे, ये नहीं सोचेंगे इसको ज्ञान सुनाना है, ये तो सब्जी वाला है ना, रोज ही आता है। कहीं गए तो मनसा में है कि मुझे अनुभव कराना है कि मैं सब्जी ले रहा हूं और कोई दुनिया वाला ले रहा है, उसमें कुछ फर्क है, ये देखना। इसलिए बाबा कहते हैं मनसा द्वारा अनुभव करवाना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय करवाना। आप रिक्शा में बैठे हो, रिक्शा वाले को कहो तुम्हें पता है कि 5000 वर्ष पहले भी मैं आज के दिन तेरी रिक्शा में बैठेगा, अब उसका चेहरा देखो, खुश होगा, हैरान होगा, क्या क्या अच्छा अच्छा, तो ये हमको पता उसको नहीं पता, फिर आप उसको थोड़ा ज्ञान दे सकते हैं। और तो क्या हुआ, वाचा द्वारा परिचय करवाना ज्ञान के खजाने का, और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन का प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। आपके चेहरा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, आपका चेहरा हर चीज दर्शा सकता है। آپ کا خوش چہرہ ہوگا، دوسرے کو آپ ہی لگے گا کوئی خاص بات ہے، آپ اکیلے بیٹھے ہیں خوش ہیں، کوئی آئے گا کیا بولے گا، بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا سوچتے ہو، اس کو پتا لگ گیا نا کوئی خوشی کی بات ہے، آپ کا چہرہ چنتا میں ہوگا، وہ کہے گا بڑے اداس لگ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو گیا فرق۔ اسی پرکار سے کسی کے چہرے میں بری نظر ہے، بری درشٹی ہے، اس کے چہرے سے پتا لگ جائے گا بول نہیں رہا، بری درشٹی ہے۔ دوسری طرف بیٹھی ہوئی ماتا کہہ دے گی اس آدمی کی نا مجھے نظر اچھی نہیں لگ رہی۔ اسی طرح سے کسی کا غصے والا چہرہ ہوگا، آپ کو پتا لگ جائے گا یہ رودی ہے، کوئی ڈرا ہوا ہوگا، ہوتا ہے نا نیلا چہرہ، پیلا چہرہ، لال چہرہ۔ اس لیے بابا کہتا ہے آپ کا چہرہ سب کچھ بیان کرتا ہے، آپ کی کسی سے نہیں بنتی، وہ آپ کے پاس سے گزرتا ہے، اس وقت آپ کا چہرہ کیسا ہوتا ہے۔ اور بھی لوگ گزر رہے ہیں پر کچھ خاص یہاں ہوتا ہے، بھئی وہ جا رہا ہے۔ اس لیے بابا کہتا ہے چہرہ اور پھر چلن، اسی کے انوسار جس کو لوگ چال چلن کہتے ہیں، چال چلن کریکٹر کو بھی کہتے ہیں، تو اس لیے بابا کہتا ہے وہ بھی سیوا کرتا ہے۔ سمپورن یوگی جیون کے پریکٹیکل روپ کا انبھو کروانا، تینوں ہی سیوا ایک سمے ہی کرنی، الگ الگ نہیں۔ سمے کم ہے اور سیوا ابھی بہت کرنی ہے، اس لیے تینوں کٹھی کریں گے سفل ہوں گے۔ باپ دادا نے دیکھا ہے کہ سب سے سہج سیوا کا سادھن ہے۔ اب دیکھیں گے آپ، باپ دادا نے جو سیوا کا سادھن شروع کیا ہے وہ منسا سے نہیں کیا ہے، یہ نوٹ کرنا۔ باپ عام طور پہ منسا سے شروع کرتے ہیں نا، لیکن باپ دادا کیا کہہ رہے ہیں، سب سے سہج سیوا کا سادھن ہے ورتی دوارا وائبریشن بنانا۔ واستو میں ورتی بھی منسا میں ہوتی ہے، سمرتی بھی منسا میں ہوتی ہے، اور درشٹی بھی منسا ہی بولتی ہے ایسے کر، لیکن بابا نے کہا ورتی ایٹیچیوڈ دوارا وائبریشن بنانا، تو اس سے آپ کا وائبریشن بنے گا، اور وائبریشن دوارا وایو منڈل بنانا، کیونکہ ورتی سب سے تیز سادھن ہے۔ اگر آپ اپنی ورتی کڑی کر لیں، سخت کر لیں، تو کوئی بھی ویکتی آپ کے پاس آئے گا نا، جس کو لوگ سیریس کہتے ہیں، تو سوچے گا، دس بار سوچے گا کہ میں اس سے پرے ہی رہوں، کچھ پوچھنا ہے تو ڈر کے پوچھے گا، کیونکہ آپ نے اپنی ورتی اسٹرانگ بنائی۔ اگر ڈھیلی بنائی ہوئی ہے تو جانور بھی پاس آ کے بیٹھ جائے گا، کہے گا ان کا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور آ جائے گا آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا شروع کر دے گا۔ ایک بار ایک بھائی نے جینتی بہن کو کوئی سنسار جو سوچنا ہوتی نا، سماچار دینا ہے، تو اس کو کچھ کہا ذرا سا، تو جینتی بہن بولی Why are you giving this unimportant information to me? کہ آپ مجھے اس پرکار کا سوچنا کیوں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ویکتی نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا کہ میں اس کو سوچنا دوں، اور یہاں چلتے پھرتے کو کوئی سوچنا دے کہے گا آگے کیا ہوا، اس کے آگے کیا ہوا فرق ہو گیا نا۔ جیسے سائنس کی راکٹ فاسٹ جاتی ہے، ویسے آپ کی روحانی شبھ بھاونا، شبھ کامنا کی ورتی، درشٹی اور سرشٹی، ورتی درشٹی اور سرشٹی کو بدل دیتی ہے، اتنی پاورفل ورتی ہے۔ اور اس میں بابا نے آج بہت اچھا ایگزامپل دیا، وہ آگے آئے گا۔ ایک ستھان پر بیٹھے بھی ورتی دوارا سیوا کر سکتے ہیں آپ۔ سنی سنائی بات پھر بھی بھول سکتی ہے، لیکن جو وایو منڈل کا انبھو ہوتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے۔ جیسے مدھوبن کا انبھو ہوتا ہے، آپ دیکھیے آپ کو یہاں کئی لوگ انبھو سنائیں گے، اس وقت آپ کو اچھا لگے گا، دو مہینے بعد آپ کو بھول سکتا ہے، ہاں کچھ کہا تو تھا، لیکن یہاں جو وایو منڈل کا آپ انبھو کر کے جائیں گے کہ 20,000 لوگ بیٹھے ہیں، شانتی تھی، کہیں شور ہوا سب کسی نے دھیان نہیں دیا، بھوجن کسی پیار سے پروس رہے تھے، جو انبھو کر کے جاتے ہیں وہ نہیں بھولتا۔ تو بابا کہتے ہیں جیسے مدھوبن میں انبھو کیا ہے کہ برہما باپ کی کرم بھومی، یوگ بھومی، چرتر بھومی کا یہاں وایو منڈل ہے، پھر یہاں سے بھی کئی اوپر جاتے ہیں، پانڈو بھون میں جاتے ہیں، بابا کے کمرے میں جاتے ہیں، تو فرق محسوس ہوتا ہے۔ اب تک بھی ہر ایک اسی وایو منڈل کا جو انبھو کرتے ہیں وہ بھولتا نہیں ہے۔ وایو منڈل کا انبھو دل میں چھپ جاتا ہے، تو وانی دوارا بڑے بڑے پروگرام تو کرتے ہی ہو، لیکن ہر ایک کو اپنی شریشٹھ، یہ ہر ایک کو کرنا ہے، روحانی ورتی سے، وائبریشن سے وایو منڈل بنانا۔ اب مان لو 4B کے ٹرین میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ سامنے اور بھی پیسنجر بیٹھے ہیں، تو وہ پیسنجر بھی یہ دیکھ کر کے یہ بیکے جا رہے ہیں، کوئی خراب بات آپس میں نہیں کریں گے، الٹی سلی بات نہیں کریں گے، کرنی ہوگی تو کہیں گے باہر چل، کیونکہ ان کو یہ وائبریشن ہے ہمارا، ہے کہ نہیں ہے۔ اسی پرکار سے آپ مندر میں خالی چلے جاؤ، کوئی نہیں ہے، وہاں کا وائبریشن نوٹ کرو، اور پھر کسی سینما ہال میں خالی چلے جاؤ، کوئی سینما نہیں چل رہا، وہاں کا وائبریشن نوٹ کرو، آپ کو فرق نظر آئے گا، وہاں آپ کو شانتی محسوس ہوگی، ہے بھکتی مارک کا، اور سینما ہال میں آپ کو ایسے لگے گا جیسے کوئی بھوت ناچ رہے ہیں، کچھ ایسا فیل ہوگا، فرق ہو گیا نا۔ اس لیے بابا کہتا ہے وایو منڈل بنانے سے بھی سیوا ہے۔ ہماری مما تھی، مما جب چلتی تھی تو فرشتے کی طرح چلتی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا مما آ رہی ہے جا رہی ہے۔ تو اگر دو جنے آپس میں نارمل بات بھی کر رہے ہیں، تیز نہیں کر رہے، نارمل کر رہے ہیں، مما صرف پاس سے گزر جائے، مما ان کی آواز دھیمی ہو جاتی، اپنے آپ اتنا پربھاؤ تھا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے مما کانپور میں گئی تھی، پلین کے دوارا بابا نے بھیجا تھا، مما نے ایک ہی باری پلین میں یاترا کی ہے، اور وہاں پبلک فنکشن تھا، اناؤنس ہو گیا تھا ان کی ماتیشوری آ رہی ہے اور پبلک ہال میں لیکچر کرے گی، تو سارے نگر کے آریہ سماجی اخبار والے، انہوں نے کہا اچھا ان کی مما آ رہی ہے پبلک فنکشن میں، آج ہم ان کے خوب پرشن پوچھیں گے، تو تیار ہو کر آ کے بیٹھ گئے تھے۔ اور ہمارے اسٹیٹ سیکرٹری جو تھے اس سمے، ایک ترلوک چند بھائی جی تھے وکیل، وہ سبا کو دیکھ کر کے سوچ میں پڑ گئے تھے، ہماری مما آ رہی ہے اور یہ لوگ تو بڑی بڑی سوچ کے آ رہے ہیں کہ ہم یہ پوچھیں گے، پتہ نہیں واتاورن کو ڈسٹرب ہی نہ کر دیں، کیونکہ واتاورن کی بات ہو رہی، سب کیوریس تھے کہ مما کیسی ہوتی ہے ان کی۔ اور بابا نے مما کو ایسی پرسنالٹی بنایا تھا اور کسی بھی بی کے اندر وہ پرسنالٹی نہیں ہے۔ اگر ہم بھی بڑے فخر سے کہتے تھے کوئی سادھو مہاتما آدھی وہ بڑے گول مول ہوتے ہیں، کھائے پیے ہوتے ہیں اور ان کی گدیاں چلتی ہیں، اور ان کے چہرے سے آپ کو کبھی چنتا نہیں دکھے گی، کیوں کہ نئی آتمائیں ہیں اپنی پرالبدھ بھوگ رہی ہیں، ہم لوگوں کے چہرے ویسے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم تو پرانی آتمائیں ہیں، دو یگ کے ہم وکرم وناش کر رہے ہیں، لیکن بابا نے مما کو اسپیشل پرسنالٹی بنایا، تو ہم کوئی آئے ہماری مما کو دیکھو۔ तो मम्मा स्टेज पर आई, आके सेंटर में खड़ी हो गई हाथ पीछे करके और केवल शांति की पावरफुल दृष्टि दी सबको। वो लोग दंग रह गए पर्सनैलिटी से, उनके प्रभाव से सारे प्रश्न पूछना भूल गए, किसी ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा, कहा हम सुनेंगे। तो ये है कि दूसरे को प्रश्न पूछने का मौका ही ना लगे। अब शेर होता है, शेर से सब डरते हैं, शेर किसी से नहीं डरता, इसीलिए उसको शेर कहते हैं। अब दुर्गा की शेर पर सवारी है, अर्थात कि ऐसा प्रभाव जिससे दूसरा खुद सोचने लग जाए इसमें क्या है। तब बाबा कहते हैं, हरेक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है, लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में मन में, यहां से मुरली शुरू होती है शिक्षा की, किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई नेगेटिव वृत्ति, व्यर्थ वृत्ति है तो नेगेटिव मैंने किचड़ा अर्थात मन में किचड़ा है, तो शुभ वृत्ति की सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। अपनी को भी हम पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में भी परेशानी तो होती है ना। हम कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। आप जब तक उस बात को भूलेंगे नहीं, क्षमा नहीं करेंगे किसी को, चलो भी जाने दो, आप भूल नहीं सकते। पहले फॉरगिव है फिर फॉरगेट है। इसलिए बाबा कहता है कि आप चिंतित है, सोचे जा रहे हैं, अभी छोड़ो हो गया ना, फिर आप शांत होंगे। तो बाबा कहते हैं वेस्ट थॉट्स तो चलती है ना, तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है। नंबर वार तो हैं, अच्छे भी हैं, तो साथ में खिटखिट वाले भी हैं, लेकिन ये ऐसा है, ये समझना अच्छा है। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं। रॉन्ग और राइट का जजमेंट तो ज्ञान है, लेकिन रॉन्ग को दिल में बिठा लो ये ज्ञान नहीं है। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है। रॉन्ग को रॉन्ग तो कहेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं, बाबा को ज्ञान देते हैं, ये बड़ी वंडरफुल बात बाबा ने सुनाई। कई बच्चे कहते हैं, बाबा आपको पता नहीं ये कैसा है, आप देखो ना तो पता पड़ जाए आपको। तो बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ये ऐसा है, क्योंकि बाबा को तो पता है। लेकिन ऐसी बातों को अपने दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो, और खराब चीज अगर मन में है, दिल में है, तो जहां खराब चीज है, वेस्ट थॉट्स हैं, वह विश्व कल्याणकारी कैसे बने। आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? कोई कहेगा कि हम लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी हैं, यूपी के कल्याणकारी हैं, या जहां भी रहते हैं, चलो देश नहीं तो अपने सेंटर के कल्याणकारी हैं। नहीं, ऑक्यूपेशन तो सब यही बताते हैं कि विश्व कल्याणकारी है, क्योंकि हमने नए विश्व में जाना जो एक ही विश्व है। तो यहां भी जहां भी रहते हो, चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो सब कौन है विश्व कल्याणकारी हैं, तो हाथ उठाओ। सभा में बाबा ने सबसे हाथ उठवाया है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं। कल तो उठवाया था, आज भूल तो नहीं गए, इसलिए आप फिर उठा लो, बाबा खुश हो जाएगा। کہ بچوں کو یاد ہے کہ ہم وشو کلیان کاری ہیں. تو بابا کہتے ہیں وشو کلیان کاری اچھا, تو من میں کوئی بھی خرابی تو نہیں ہے, اس کی نشانی ہے. سمجھنا الگ چیز ہے, سمجھو بھلے یہ رائٹ ہے یہ رونگ ہے, لیکن من میں نہیں بٹھاؤ, کیونکہ من میں ورتی رکھنے سے درشتی اور سرشتی بھی بدل جاتی ہے. آپ من میں کسی کا دوش رکھو گے تو آپ سے بول چال میں بھی ویوہار میں بھی اس سے ویسا ویوہار نہیں ہوگا. اب باپ دادا نے ہوم ورک دیا تھا اس سمے, باپ دادا نے ہوم ورک دیا تھا. سب سے صحت پرشارت ہے جو سبھی کر سکتے ہیں, ماتائیں بھی کر سکتی ہیں, بوڑھے بھی کر سکتے ہیں, یوا بھی کر سکتے ہیں, بچے بھی کر سکتے ہیں. وہ یہی ودھی ہے, صرف ایک کام کرو, کسی کے بھی سمپرک میں آؤ تو دعا دو تو دعا لو. بابا نے کیا کہا, کیا کہا, یہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ بابا نے کہا دعا دو دعا لو. کئی سوچتے ہیں دعا لو دعا دو, پہلے وہ کرے پھر میں کروں, ایسا نہیں ہے. چاہے وہ بد دعا دیتا ہے لیکن آپ کورس کیا کراتے ہو نیگیٹو کو پوزیٹو میں بدلنے کا, تو اپنے کو بھی اس سمے کورس کراؤ. چیلنج کیا ہے کہ پرکرتی کو بھی تمو پردان سے ستو پردان بنانا ہے. آپ کو جو دیوتاؤں کے شریر ملیں گے اپنے آپ تھوڑی مل جائیں گے, کچھ محنت کرنی پڑے گی نا. تو بابا کہتا ہے پرکرتی کے تتووں کو بھی آپ نے ستو پردان بنانا ہے. آپ پرکرتی کے تتووں کو بھاشن کر کے ستو پردان بنا سکتے ہو, تو سنتی نہیں ہے, لیکن ہم بنا سکتے ہیں, اس کا پروف ہے. ویسے تو جاپان سے ایک سائنٹسٹ آیا تھا, اس نے دو جگہ پانی رکھا اور ایک پانی کو اس نے بہت شبھ سنکلپ دیے, تو پانی کے جو کرسٹل بنے بہت قاعدے سر تھے. دوسرے کو اس نے نیگیٹو تھاٹ دیے, اس کے کرسٹل ٹیڑے بانکے بن گئے. اور اب تو ہماری یوگی کھیتی ہی اس کا پرمان ہے کہ جتنے ہمارے بھائی بہنوں نے یوگی کھیتی کری ہے, خالی اس کو یوگ لگایا, وائبریشن دیے ہیں, اس میں بہت فرق آ گیا ہے, سارے لوگ سویکار کر رہے ہیں. اگر یہ ہو سکتا ہے تو آپ کے خیال میں ہم پرکرتی کو ستو پردان کیسے بنائیں گے؟ شبھ ورتی سے. تب وہ تو بھاشن نہیں سنے گی, مرلی نہیں سنے گی نا پرکرتی. تب بابا کہتا ہے وہی یوز کرو. چیلنج کیا ہے کہ پرکرتی کو بھی تمو پردان سے ستو پردان بنانا ہے. آپ سب نے یہ چیلنج کی ہے, بنانا ہے. کاندھ ہلاؤ, ہاتھ ہلاؤ, دیکھو, دیکھا دیکھی نہیں ہلانا, اپنا ہلانا. آپ نے چیلنج کیا ہے کہ ہمیں ستو گنی تتو ملیں گے, ستو گنی شریر بنے گا, سندر شریر بنے گا, پرکرتی کا کیا ہے اس کو ستو پردان بنانا ہے. اچھا بھوجن کیوں کرتے ہو, ساتوک خیال کیوں رکھتے ہو کہ پرکرتی ستو پردان بنے؟ کیونکہ ابھی سمے پروان ورتی سے وایو منڈل بنانے کے تیور پرشارت کی آوشکتا ہے. تو ورتی میں اگر ذرا سا بھی کچڑا ہوگا تو ورتی سے وایو منڈل کیسے بنائیں گے؟ پرکرتی تک آپ کا وائبریشن جائے گا, وانی تو نہیں جائے گی, وائبریشن جائے گا, اور وائبریشن بنتا ہے ورتی سے, اور وائبریشن سے وایو منڈل بنتا ہے. تو مدھوبن میں بھی ایک جیسے تو نہیں ہے, لیکن برہما باپ اور اننیہ بچوں کی ورتی دوارا, تیور پرشارت دوارا یہ وایو منڈل مدھوبن کا بنا ہوا. پھر بابا کہتے ہیں آج آپ کی دادی جی یاد آ رہی ہے. دادی کی وشیشتا کیا دیکھی, کیسے کنٹرول کیا؟ کبھی بھی کیسی بھی ورتی والے کی کمی دادی نے من میں نہیں رکھی. یہ ہے بات. सभी को उमंग दिलाया, आपकी जगदम्बा माँ ने भी वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी। जिसके वायुमंडल का अनुभव आज भी आप सब कर रहे हैं, चाहे फॉलो फादर है चाहे बाप दादा, हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जानकर उस विशेषता को अपना बनाओ। बाबा कहते हैं एक तो फॉलो फादर करो, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं करो, किसी की कमी आ जाएगी, लेकिन सबके गुण ग्रहण करो। तो हर एक बच्चे में ये नोट करना। अब ये खास बात बाबा ने शुभ दृष्टि रखने के लिए कही है कि बाप दादा का जो भी बच्चा बना है उस एक एक बच्चे में, चाहे तीसरा नंबर है या कोई नंबर है, लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है और बाप दादा का वरदान है कि सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हैं लेकिन एक विशेषता जरूर है। ताली बजाओ आप में कि हर एक को बाबा ने एक स्पेशल विशेषता दी है, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है और वर्षा लेने का हकदार है। परवश है, परवश मैंने क्रोध के वश है, लोभ के वश है, विकारों के वश है, लेकिन बाप से प्यार उसका अटूट है, अभी तो बाबा का बच्चा बना हुआ। इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता के अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव है चाहे बड़े जोन है चाहे सेंटर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। यहाँ तक कि व्यवस्था भी है, ऊपर नीचे कहीं है, उसमें भी शुभ भावना ही रखनी है कि ठीक हो जाएगी, बाबा का काम। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो लेने वाला कौन, क्यों क्या देने वाला लेने वाला एक होता है या दो? अगर कोई आपको कोई खराब चीज देता है तो आप क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे, वापस करेंगे या फेंक देंगे या अलमारी में संभाल के रख देंगे? मान लो आपको कोई बिच्छू दे दे तो आप बिच्छू को क्या करेंगे, जेब में रखेंगे, उसको वापस करेंगे या फेंक देंगे? तो दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि आपके दिल बाप दादा का तखत है। इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं मन में याद कर लो कि दुआ देना है और दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना दूसरे कान से निकालना, ये भी तो आपका काम है या दूसरे का काम है कि सुने आप और निकाले कोई दूसरा? तब ही विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। ये विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से, दुआ शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके जड़ चित्र भी क्या करते हैं, दुआ देते हैं। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। मंदिर में ऐसे हाथ होता है तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बने हो तब तो आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। चलो, परवश आत्मा को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे बन के क्षमा दे दिया तो अच्छा ही किया ना। आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो या नहीं हो, कहो पहले मैं, इसमें हे अर्जुन बनो, ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वह कुछ ना कुछ स्नेह लेकर सहयोग क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ऐसा हो सकता है? بابا کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی ہے خالی نہیں جانے دو، آپ کو کوئی گفٹ نہیں دینا ہے، لیکن سنیہ سہیوگ کما امنگ غصہ اپنے سے اس کی بڑھانی ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ پہلی لائن والے سے پوچھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، پہلے یہ کرنا پڑے گا۔ آپ جو کرو گے تو سبھی کریں گے۔ بابا پوچھتا ہے ٹیچر کریں گے؟ ٹیچر سبھی کو سہیوگ کما دیا امنگ غصہ دیں گے؟ بابا اس کو کیا کہا تھا؟ بابا کو کہا تھا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیں گے۔ اچھا، ابھی وشو کو بہت آوشیکتا ہے، آپ نوارن مورت بن جاؤ۔ آپ کے نوارن مورت بننے سے آتما نروان دھام میں جا سکیں گے، اور جب آپ ان کو وہاں بھیجو گے تو نیچے صفائی ہوگی تو ستجگ آئے گا۔ اگر آپ نوارن مورت نہیں بنیں گے تو آتما بیچاری نروان میں نہیں جا سکیں گی، تڑپیں گی۔ نروان کا گیٹ آپ کو ہی کھولنا ہے، باپ کے ساتھ ساتھ گیٹ کھولیں گے نا، تو بابا کہتے ہیں گیٹ کھولنے کی سیریمنی کریں گے، ابھی ڈیٹ بنانا آپس میں۔ اچھا، تو کیا سمجھا؟ ہم کو اپنے اندر کچلا نہیں رکھنا ہے، بالکل نہیں رکھنا ہے، تبھی ہم شریشٹھ کرم کر سکیں۔ پانی والا دودھ لوگ پسند نہیں کرتے، کچڑے والا پٹرول نہیں پسند کرتے، موم بتی میں کچھ مکس ہو تو تر تر کرتی رہتی ہے۔ تو بابا کہتے ہیں آپ شریشٹھ سنکلپ اٹھانا چاہتے ہو اور آپ کے من کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، اس گڑبڑ کو باہر باہر رکھو، سمجھ بھلے لو یہ گڑبڑ ہے، لیکن اس رستے میں نہیں جاؤ، من میں نہیں دھارن کرو۔ اور اس کا طریقہ کیا بتایا؟ دعائیں دو تو آپ کو کوئی کچڑا دے گا ہی نہیں، دعائیں لو۔ اوم شانتی۔